हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 42, 43 एंड 44। इन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के स्वाभाविक गुणों के विषय में बता रहे हैं कि किसके अंदर कौन सा गुण होता है जिससे वो कार्य करते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए कृपा की याचना करते हुए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करेंगे और मंगलाचरण करते हुए कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथ पीतं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूत देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत की तामात की जय हो। अष्टदशोध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 42। भगवान कह रहे हैं, शमो दमः तपः शौचम् क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। यानी ब्रह्मों के अंदर स्वभाव से यह गुण होते हैं। शब्दों का अर्थ देखिए, शमो अर्थात शांति प्रियता, यानी कि उनको झगड़ा वगैरह अच्छा नहीं लगता, वो एकदम हर जो भी चीज को सुलझाने में एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। दमः मतलब आत्मसंयम। अब शम जो होता है, शम जो होता है, इसका मतलब है मन पर अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना। यानी कि मन के विचार जो मन में आते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मन में बुरे विचार आते हैं या फिर कोई ऐसे जो अनावश्यक विचार आते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो प्रयत्न नहीं करता है। शम यानी मन को कंट्रोल करता है। और दम का क्या मतलब होता है? दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाना। व्यर्थ के विषय भोग मतलब जैसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं अत्याहार प्यार। अत्याहार मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज्यादा ना खाने के प्रति, ना पहनने के प्रति, ना मतलब जितना आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से ब्राह्मण काम करता है। आवश्यकता की अधिक नहीं, बस विषय भोग में इंद्रियों को नहीं लगाता। वास्तव में इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है कि भाई इंद्रियों को खाना चाहिए, आहार निद्रा सब जो चाहिए वो लिमिटेड करता है पूरा, लेकिन उसको धमा का मतलब होता है अनावश्यकता के, उसको ज्यादा नहीं देता, आवश्यकता से अधिक नहीं। अनावश्यक इंद्रिय भोग अत्यधिक उन्नति में बाधक है, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण को उन्नति करनी होती है। चारों समाज जो समाज के जो चारों वर्ण हैं, आश्रम है, उनका हेड ब्राह्मण है, उनको ब्राह्मण जो है वो सही सलाह देता है, सही मार्गदर्शन करता है। तो वो उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? शमो दमः तपः। तपः का मतलब होता है तपस्या। जैसे ब्राह्मण जो होता है उसका स्वभाव होता है तपस्या करने का। ऐसे वो सुबह सवेरे मंगला, भले कितनी भी तेज सर्दी लग रही होगी या कितनी गर्मी होगी, वो अपना भोजन खुद पकाते हैं और सर्दियों में भी सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। तपस्या उनका स्वभाव है, ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती, वो स्वभावतः तपस्वी होते हैं। शौचम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता। दो तरह की पवित्रता बताते हैं, एक होती है हृदय की पवित्रता और दूसरी होती है शरीर की पवित्रता। हृदय की पवित्रता उत्पन्न होती है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से। तो वो ब्राह्मण लोग सदैव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और शरीर की पवित्रता, वो स्नान करते हैं और साफ, ऐसा नहीं कि नई ड्रेस लेकिन साफ सुथरा पवित्र ड्रेस उनको पहनना होता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की विग्रह सेवा करते हैं, तो फिर उनको साफ सुथरा रहना होता है। शांति यानी सहिष्णुता, वो उनको अगर कोई कुछ बोल भी देता है, कोई कठोर वचन, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तरोर यह सहिष्णु, इतना सहिष्णु होना है जितना कि वृक्ष। अब वृक्ष को कोई पत्थर भी मारता है तो भी वो उसकी बदी में फल देता है, छांव देता है। उसी प्रकार ब्राह्मण भी शांति होती है, उसके अंदर सहिष्णुता होता है। उसको यदि कोई उल्टे शब्द भी बोल देता है तो भी उसके अंदर क्रोध नहीं होता है। आर्जवम सत्यनिष्ठा, उसके अंदर सत्य के अंदर निष्ठा होती है, वो पहले कुछ भी हो जाए वो अधर्म का साथ नहीं देता। और एवच यानी कि एवं निश्चय ही च ज्ञानम, उसके अंदर ज्ञान होता है क्योंकि उसका स्वभाव होता है कि वो ज्ञान अर्जित करता है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। तो ये ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं। तो उनके अंदर ज्ञान क्योंकि अर्जित करते हैं ताकि बांटें, तो ज्ञान होता है। और विज्ञान उसके साथ साथ विज्ञान होता है, वो जो ज्ञान उसने हासिल किया होता है उसको प्रैक्टिकल करते हैं। आस्तिक्यम का मतलब होता है धार्मिकता। ब्राह्मण जो होते हैं वो धर्म के साथ चलते हैं, यानी कि वो जब भी कोई निर्णय लेंगे वो धर्म के अनुसार ही लेंगे। और भगवान बताते हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ब्राह्मण है उनके स्वभाव के माने कि उनके स्वभाव से उत्पन्न ये कर्म होते हैं। कौन कौन से? अनुवाद देखिए, शांति प्रियता, वो हमेशा शांति प्रिय रहते हैं। आत्मसंयम, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तपस्या करते हैं, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 9 गुण बताए जिसके अनुसार ब्राह्मण कार्य करते हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 43 में, उच्चारण कीजिए, शौर्यं तेजो जीते धाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कैसे? शौर्यं तेजो धृते दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। फिर से, शौर्यं तेजो धृते दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यम अर्थात वीरता, शब्दों का अर्थ देखिए। वीरता का मतलब है वो बचपन से उनका स्वभाव कैसा होता है कि वो वीर होते हैं, जैसे बचपन से ही शिकार करने के लिए जाते हैं, अभी यंग होते हैं, और है ना जो खूंखार जानवर होते हैं जैसे शेर, उसको भी मारने उनके साथ भी लड़ाई करते हैं, और उनके अंदर अंदर वीरता का एक पहले से पावर होता है, तेज होता है उनके अंदर, यानी कि वो डरते नहीं है किसी से भी लड़ाई करने के टाइम पर, या वो उनके अंदर ऐसा होता है कि मुझे मैं कर सकता हूँ। वीर होते हैं वो, बहुत शक्तिमान होते हैं वो, शुरू से ही ट्रेनिंग, जैसे वो नहीं होती मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं। धृति का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, संकल्प होता है उनके अंदर। अब संकल्प कैसे, जैसे क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो राजा होते हैं, अब राजा लोग के अंदर धृति होना स्वाभाविक है क्योंकि उनको कैसी भी सिचुएशन आए तो उनको फौरन से सही डिसीजन लेना होता है दृढ़ संकल्प के साथ। अगर सही डिसीजन नहीं होगा पता उसको क्या सजा दूं, समझ में नहीं आ रहा है इसके, इसने ये किया है, तो उसको उनको फौरन से डिसीजन लेना होता है, तो वो दृढ़ संकल्प उनके अंदर होता है। दक्ष का मतलब होता है दक्ष होते हैं, दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट होते हैं अपने किसी भी कार्य में, वो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। युद्ध, युद्ध में च यानी तथा अपि पलायनम, यानी ऐसा है कि जब उनके सामने युद्ध करना होता है उनको, ये उनका स्वभाव होता है कि युद्ध में वो कर सकते हैं। अब सामने कोई भी आए, कोई भी पार्टी सामने, भले अपराधी है तो चाहे वो अपराधी अपना है या कोई भी हो, पराया हो, इस डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, वो फौरन से डिसीजन लेते हैं कि अगर उसने यह अपराध किया है तो उसका क्या, उसको परिणाम भुगतना है। और युद्ध के अंदर वो पलायन नहीं करते, यानी कि युद्ध में जब वो आ जाते हैं तो कभी भी पीठ नहीं दिखाते। क्षत्रिय, जब क्षत्रिय माताएं जब पुत्र उत्पन्न करती हैं तो उनको एक शिक्षा देती हैं कि जब वो जा रहे होते हैं ना युद्ध करने के लिए, तो बोलती है कि देखो तुम जब वापस आओगे ना तो पीठ पर जख्म लेकर नहीं आना, ठीक है, आप आओगे तो भले छाती पर सीने पर जख्म लेकर आना, लेकिन पीठ पर यदि तुमने जख्म लिया तो मुझे अपना मुंह ना दिखाना। इतना क्षत्रिय की माताओं के अंदर इतना बल होता है। पहले जमाने में हम देखते हैं जब क्षत्रिय वीर युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी माताएं उनको आरती करती थी, तिलक लगा के उनको भेजती थी कि बेटा युद्ध में विजयी होके आना वरना मत आना। जब युद्ध होने महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, लेकिन क्योंकि शांति प्रस्ताव तो हस्तिनापुर में स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुंती महारानी से जब विदुर जी के घर में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि माता आपके पुत्रों के लिए कोई संदेश है, तो कुंती महारानी ने कहा हाँ कृष्ण, मेरे पुत्रों को कहना कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए पुत्रों को उत्पन्न करती है वह दिन आ गया है, युद्ध में विजयी होके आना वरना पराजय वाला मुंह लेकर मेरे पास नहीं आना, पराजय नहीं कर या तो मर जाना या तो विजयी होके आना। तो इनके यानी कि जब युद्ध में जाता है कोई वीर तो कोई ये नहीं मतलब पता नहीं होता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्षत्रियों के अंदर इतना बल होता है कि वो जाते हैं युद्ध करने के लिए, और उनकी माताएं इवन उनकी पत्नियां जो इनकी शादी हो गई होती पत्नियां जो है वो आरती करके और तिलक लगा के भेजते हैं अपने मतलब पति को कि आप जाओ और युद्ध करो। तो वो कभी भी युद्ध से पलायन नहीं करते। दानम ये सब गुण है उनके अंदर स्वाभाविक, दान देने का गुण होता है। क्यों? क्योंकि वो राज्य करते हैं और राजा पहले हमें कितने सारे हमारे पास उदाहरण है, जैसे राजा हरिश्चंद्र उसने अपना सब कुछ इवन अपना पत्नी और बच्चा भी दान में दे दिया, और इसके अलावा राजा बलि जिनको शुक्राचार्य ने बताया कि जो सामने दान लेने आया ना 3 कदम वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, छोटा सा दिख रहा है बोने जैसा, लेकिन वो साक्षात भगवान विष्णु है और तुम्हारा सब कुछ हरण करके ले जाएगा, खबरदार इसको दान मत देना। लेकिन महाराज बलि ने कहा दान देना तो मेरा स्वभाव है, मैं राजा हूँ, दान देने की प्रतिज्ञा है मेरी, मुझे दान देना पड़ेगा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भगवान मुझसे दान लेने के लिए आए हैं। तो दान देने में पीछे नहीं हटते। जैसे करण के विषय में हमें पता है, करण जब उसको पता था कि ये कवच और कुंडल जो है वो मेरी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन जब इंद्र कवच और कुंडल दान देने के लिए आए तो वो 1 मिनट के लिए भी हेजिटेट हिचकिचाया नहीं और फौरन अपने शरीर का कवच निकाल के दे दिया कि हाँ मैं दान में आप जो भी मुझसे ब्राह्मण बन के आए हो और दान जो भी मांगोगे तो मैं वो देने के लिए सक्षम हूँ। इतना इतने इतने दानी हैं, जितने भी राजा हैं उनको दानी होना चाहिए, वो इतना ब्राह्मणों को दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार एक ब्राह्मण आया युधिष्ठिर महाराज के पास, बहुत तेज वर्षा हुई थी उस टाइम पर, और जितनी भी जंगल में लकड़ियां थी वो सारी गीली हो गई थी। अब ब्राह्मण का स्वभाव होता है कि वो स्वयं प्रसाद मतलब पकाता है खाना और भोग लगाता है और फिर खाता है। तो युधिष्ठिर महाराज के पास आया कि मुझे लकड़ी चाहिए, सूखी लकड़ी दान में चाहिए, तो मैं ना अपना भोजन बनाऊं और खाऊं, भगवान को अर्पण करके खाऊं। तो क्योंकि सारी लकड़ियां गीली हो गई थी, भीम और अर्जुन गए जंगल में, काफी टाइम देखा लेकिन फिर भी उनको कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। वो वापस आ गए, बोला सूखी लकड़ी तो कोई है ही नहीं। तो ब्राह्मण वहां से चले गए, बोला नहीं है तो क्या कर सकते। फिर वही ब्राह्मण गए करण के घर पे और बोला कि मुझे सूखी लकड़ी दान में चाहिए ताकि मैं भोजन बनाऊं और खाऊं, मैं किसी के हाथ का नहीं खाता। तो अब करण को भी पता था कि बारिश इतनी हो गई है तो कोई भी है ना सूखी लकड़ियां होंगी नहीं जंगल में, तो लेकिन फिर भी करण ने देखा मेरे घर में कितना सारा फर्नीचर है जो लकड़ी का बना हुआ है, सूखी लकड़ी का, तो उसी फर्नीचर को फौरन से तलवार से काट के दे दिया कि हाँ ब्राह्मण देवता आप ले लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन इत्यादि को बोला क्या तुम्हारे घर में फर्नीचर नहीं था, तुम भी दे सकते। लेकिन दान जो है मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वो दान देने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते थे। जो क्षत्रिय होते थे उनका उनका स्वभाव होता था दान देने का। और आगे ईश्वर भावश्य, ईश्वर भावश्य मतलब वो पालन करने के लिए सक्षम होते थे। जैसे अब क्षत्रिय होते हैं उनका कार्य क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई आपत्ति आई है, किसी निर्दोष को अगर कुछ है ना कष्ट पहुंच रहा है तो वो पीठ नहीं दिखाते, वो उसी टाइम पर आते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। ईश्वर भावश्य इसका यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है कि नेतृत्व का स्वभाव होता है, वो मतलब नेता बनने के लिए कि भाई हाँ मुझे, मैं कार्य करूंगा, मैं आप लोग की सुरक्षा करूंगा। इस संसार में बहुत सारे कष्ट आ रहे होते हैं, लेकिन जब भी किसी के ऊपर कोई आपत्ति होती थी तो फौरन क्षत्रिय के पास जाते थे कि भाई आप हमारी रक्षा करो। जैसे अगर कोई डाकू तंग करते थे, कोई लुटेरे, तो डायरेक्ट से राजा के पास जाके कंप्लेन की जाती थी कि राजा हमें ये प्रॉब्लम है। तो राजा जो है उनका ये कर्तव्य होता था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। आगे है क्षात्रम, यानी कि वो क्षत्रिय के गुण थे। ये क्षात्रम शब्द निकला है क्षत्रिय से, और क्षत्रिय से एक दूसरा शब्द भी निकला है क्षत्रिय, यानी कि अगर आपके ऊपर वर्षा होने वाली है, आप छत्री पकड़ लोगे तो क्या होगा, आप भीगोगे नहीं। उसी तरह ये क्षत्रिय जो लफ्ज है वो इससे कि यदि आपके ऊपर आपत्ति आने वाली है और आप किसी क्षत्रिय के अंडर में चले जाते हो, किसी क्षत्रिय के उसमें चले जाते हो संरक्षण में, तो वो आपकी रक्षा करेगा दुखी होने से। तो ये क्षात्रम कर्म स्वभावशम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों के विषय में बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, वीरता, शांति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है, यानी कि क्षत्रिय के अंदर स्वभाव से ये गुण पाए जाते हैं। और कौन कौन से गुण, कितने बताए भगवान ने, तकरीबन 7 गुण बताए, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य तथा उदारता और नेत्रता, ये क्षत्रियों के स्वभाव गुण है। और अगले 44 श्लोक में भगवान वैश्य और शूद्र के कर्म बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कैसे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कैसे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शब्दों का अर्थ देखिए, कृषि यानी हल चलाना, जैसे खेती करना, गौ रक्ष यानी गायों की रक्षा करना, गायों की सुरक्षा करना, वाणिज्यम यानी व्यापार करना, ये 3 कर्म भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वैश्यों के। या तो वो खेती करते हैं, हल चलाते हैं, या गौ पालन करते हैं, या फिर व्यापार करते हैं। वैश्य कर्म स्वभावजम, उनका स्वभाव से ही कर्म होते हैं। और आगे एक गुण बताया, एक स्वभाव स्वाभाविक गुण है परिचर्यात्मकम। परिचर्यात्मकम मतलब वो सेवा करने का सिर्फ उसका भाव होता है। सब किसका, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्र का स्वभाव होता है दूसरों की सेवा करना, और कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, उसका कर्म ही यही होता है कि उसको आता ही है कि वो दूसरों की सेवा करे। क्यों ऐसा, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, खुद से इनिशिएटिव तौर पे वो ना फैसला नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है, बस उसको जैसा कहा गया वैसा करना होता है, उसको खुद से कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, कृषि करना, गौरक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ये आज तो हमें भगवान श्री कृष्ण केवल कर्म किस किस के स्वभाव के हिसाब से किस किस को क्या क्या वर्ण मिलता है, कैसे कैसे वर्ण में वो कार्य कर रहे हैं। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है भगवान श्री कृष्ण 4.13 में बताते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये चार प्रकार की जो सृष्टि है वर्णों की, वर्ण जो चार प्रकार के हैं वो मैंने बनाए हैं, किसके आधार पर? गुण और कर्म के अनुसार। उन्होंने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे उनके अनुसार उसको गुण मिलता है। और वो अब ये ऐसा नहीं है कि किसके घर में कौन सा, जन्म से है लेकिन फिर भी जन्म से नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव जन्म से ही होगा। लेकिन छोटा बच्चा ही होगा ना, उसका स्वभाव जन्म से ही होगा। एक छोटे बच्चे की एक है ना, उसमें एक संस्कार होता है ना, जैसे हम सब चीजें रखते हैं, अनाज रखते हैं, खाना रखते हैं और पैसे रखते हैं और किताबें वगैरह रखते हैं। छोटा बच्चा होता है वो स्वाभाविक जिस चीज को स्पर्श करता है तो हम उस टाइम पर यह डिसीजन ले सकते हैं कि अगर वो किसी शास्त्र को उठा रहा है तो उसको आगे चल के ब्राह्मण के गुण अपनाएगा, यदि धन को उठा रहा है तो वो वैश्य, और यदि तलवार और इस तरह की चीजें रखते हैं ना चाकू तो वो क्षत्रिय बनेगा। इससे वो शुरू से ही मतलब अभी तक उसके अंदर वो स्वभाव होता है। वास्तव में इस समाज को चलाने के लिए चार वर्ण की जो व्यवस्था है वो आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर में भी देखा जाए, शास्त्र कहता है हमारा शरीर जो है पूरा शरीर उसके अंदर भी ये चार वर्ण होते हैं। जैसे सर जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, सर जिसमें बुद्धि होती है वो उसको ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर दिमाग होता है। वो पूरे शरीर को वो कार्य नहीं करता, वो इतना क्रियाशील नहीं, लेकिन डिसीजन पूरा का पूरा दिमाग को लेना होता है। पूरे शरीर को क्या कार्य करना है वो दिमाग के अंदर से। उसके बाद हाथ क्षत्रिय के स्वभाव के होते हैं, यानी कि जैसे अगर हमें कोई मार पड़ रही हो, कुछ भी करना, तो हम हाथों से अपना बचाव करते हैं, हाथों से संरक्षा करते हैं। तो हाथ जो है वो क्षत्रिय के हिसाब से। और पेट जो हमारा हिस्सा है पेट का, उसमें क्या होता है? वैश्य। वो क्योंकि भोजन करता है, भोजन पचाता है, भोजन का कार्य सारा पेट का होता है। और पांव जो है वो इन तीनों को, सिर को, हाथ को और पेट को उठा के चलते हैं, कार्य करते हैं। जैसे जैसे दिमाग, हाथ और ये सब जैसा भी है ना, उनको आदेश देते हैं उस हिसाब से। तो ये जो है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन संख्या के हिसाब से क्या है कि अब देखो, इस संसार में अगर हम देखें तो ब्राह्मण कितने होने चाहिए, जैसे ब्राह्मण समाज में कितने लोग हैं? बहुत कम। जैसे अगर देखा जाए तो 700-800 में से 7-8 लोग ब्राह्मण होंगे, ठीक है। और क्षत्रिय कितने होंगे? उससे डबल, क्योंकि क्षत्रियों को ब्राह्मण की भी रक्षा करनी होती है और वैश्य और शूद्र की भी रक्षा करनी होती है। तो क्षत्रिय स्वभाव के लोग 15 होंगे ज्यादा से ज्यादा। और वैश्य कितने होंगे? वैश्य जो कि व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो कितने होंगे? उससे डबल, क्षत्रिय से डबल, 30% लोग होंगे। और इसके बाद जितने बचेंगे ना वो सारे शूद्र होंगे, उनको सारों को इनका कार्य करना होगा। ऐसा स्वाभाविक ऐसा हो रहा है। अब हम अपने अगर पॉलिटिक्स में देखें तो भी MLA जो मतलब हाई तबके के लोग होते हैं वो कितने होते हैं? 400-500 लोग होते हैं। और आर्मी में कितने होते हैं? 1000-2000-10 इस तरह ज्यादा लोग होते हैं। और जो व्यवसाय यानी कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो कितने होते हैं? उससे डबल होते हैं। और सर्वेंट सबसे ज्यादा लोग सर्वेंट। लेकिन आजकल ये वर्ण आश्रम का जो ये सिस्टम है ना वो पूरा बिगड़ गया है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, सारे लोग आजकल की जो एजुकेशन है वो सब लोगों को शूद्र बना रही है। सिर्फ ऐसा, अगर हाईएस्ट से हाईएस्ट एजुकेशन भी आप हासिल करते हो ना तो उसका भी उद्देश्य क्या है कि आपको सेवा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। बस यही सिखाया जाता है कि आपको सेवा करनी है, शूद्र बनाया जा रहा है। वर्ण आश्रम का जो धर्म है उसमें आपके स्वभाव के अनुसार आपको शिक्षा देनी चाहिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि सारे लोग क्षत्रिय और ब्राह्मण और सब लोग जाते थे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए। सबका अलग अलग स्टाइल का मतलब गुरुकुल होता था, उसमें उसको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। शुरू में तो क्या होता था कि उसको है ना पहले के 4-5 साल तक जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाती थी, लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, और ये भी सिखाया जाता था गणित, जैसे काउंटिंग सिखाई जाती थी, ये हिसाब किताब। और ये सब सिखाने के बाद उसका जैसा स्वभाव है उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे अगर वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की ट्रेनिंग दी जाती थी, अगर वो है ना ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी जाती थी, अगर वो वैश्य है तो वैश्य की ट्रेनिंग। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, सिर्फ एजुकेशन दे दी जाती है, शुरू से ही एजुकेशन दे दी जाती है और आखिर तक उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसको शूद्र बनाया जाता है कि कैसे आपको दूसरों की सेवा करनी है। ऐसा उसको अपने स्वभाव के हिसाब से कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर आपको आत्मा, अब क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि आप अगर अपने वर्ण और आश्रम का सही तरह से पालन करते हो और बिल्कुल सही तरह से अपने धर्म को अच्छे तरीके से पालन कर रहे हो, आप चाहे क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो शूद्र हो जो भी हो, आप कर रहे हो बिल्कुल सही तरह से, लेकिन श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 8 कहता है धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक सेन कथा सुनिया, आप अपना धर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन कर रहे हो लेकिन विश्वक सेन कथा सुया, कथा में भगवान के वचनों में भगवान के लीलाओं में और भगवान के कार्यकलापों में यदि आप नोत्पाद यदि रहते हैं, यदि आपकी रति नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, तो केवल व्यर्थ का श्रम है, उससे कोई आपको लाभ नहीं पहुंचने वाला है यदि आप ऐसे कार्य करते हो मने के। लेकिन आज के विश्वविद्यालय जितने भी संसार में जितने भी कॉलेजेस हैं, कितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपको आपको सिखाया जाता है कि क्या कार्य करना है, लेकिन उसमें आपको कभी भक्ति नहीं सिखाई जाती भगवान की। तो श्री गोपाल जी बोलते हैं कि एटलीस्ट एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जिसमें जिसका नाम होना चाहिए दैवी वर्ण आश्रम कॉलेज। उसमें क्या होगा कि आप वर्ण आश्रम के अनुसार जो है वो आप कार्य करना सीखो और उसके साथ साथ आप अपने रियल आध्यात्मिक, दैवी का मतलब होता है आध्यात्मिक, उसमें आपको उन्नति के विषय में भी बताया जाए, आप कार्य भी करो अपने हिसाब से और किस तरह से आपको उन्नति करनी, क्योंकि ये जो वर्ण आश्रम के धर्म के अनुसार आपके अंदर जो स्वभाव है वो तो है ही, उसको आप अब किस कहीं पर भी आप चले जाओ कहीं ना कहीं आपको चार भी भले ऐसे हो, भले आज आप बोल दो कि कितना समाज इतना बिगड़ गया, लेकिन दो से चार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भगवान के भक्त होंगे, जिनका स्वभाव ऐसा ब्राह्मण जैसा होगा और जिनका ये स्वभाव होगा कि हमको सत्य बोलना है, हमको झूठ नहीं बोलना है। देखते हैं हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे बोलेंगे, आज के जमाने में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है, होते हैं वो मतलब हृदय से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं क्षत्रिय धर्म पालन करते हैं, मिलिट्री में जाएं अगर हम लोग या पुलिस में जाएं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं लेकिन दूसरों की रक्षा करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ये स्वाभाविकता उनका नेचर हम लोग कभी भी बदल नहीं सकते, लेकिन आज का समाज जो है ना वो शिक्षा क्या दे रहा है, कैरेक्टर जो उसका नेचर है उसकी कोई शिक्षा नहीं मिल रही उसको। ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, अगर आपकी दौलत चली जाए, धन दौलत चली जाए तो कुछ नहीं गया, समझो कुछ भी नहीं गया, वो तो हाथ का मेल है, आ जाना है कल चला जाएगा। और हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, अगर आपकी सेहत चली जाए यानी कोई बीमार हो जाए तो हालांकि शरीर के इतनी वैल्यू नहीं बताई गई शास्त्र में, लेकिन शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप आध्यात्मिक में उन्नति करोगे, तो समथिंग इज गॉन। लेकिन आगे कहा गया कैरेक्टर इज गॉन, यदि आपका चरित्र चला जाए तो एवरीथिंग इज गॉन, कुछ नहीं बचा आपके पास। अगर आपका चरित्र अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो हमारे चरित्र का निर्माण करे, जो हमें बताए कि हम अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्या कार्य करना है और कैसे उस कार्य को करते 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 अपने जीवन के लक्ष्य को पहुंचना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चार ही वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करीते रव रवि परिमाजे, वो अपना कार्य करते रहेंगे भले सही तरीके से लेकिन फिर भी उससे रव रव नाम के नरक में भेज दिया जाएगा यदि वो कृष्ण का भजन नहीं करते। तो हमें यह श्री प्रभुपाद की इच्छा थी और बहुत सारे ऐसे श्री प्रभुपाद के शिष्य हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एटलीस्ट एक दैवी वर्ण आश्रम नाम का कॉलेज एक होना चाहिए जहाँ पर हमें यह वर्ण आश्रम धर्म के विषय में सब कुछ बताया जाए, ताकि संसार का जो यह व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चले। आज तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह गुण बताया कि किसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, और आगे भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि अपने अपने गुण के अंदर रहकर, अपने अपने स्वभाव के अंदर रहकर हम कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।